संजय उवाच। संजय ने बोला, मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में ना ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्ति कारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई? पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, क्षुद्र हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने बोला, हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य जैसे द्रोण को देख, धर्म युद्ध में मैं ज्ञानबाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूँगा? हे अरिमर्दन कामारी, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते हैं, सम्माननीय और पूजनीय हैं।
गुरु
महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को सुधारणा युक्त जीवन शैली से मारकर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानी से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्यफल ठीक ठीक हम नहीं जानते, जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते। संकल्पों के खराब खून वाले वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्रपुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं।
कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हं शातिमान् त्वां प्रपन्नम्।
नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलियुगी मन बुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख मैं आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका ही शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए।
नहीं सुराणामपि चातिपत्।
क्योंकि पृथ्वी पर शत्रुविहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पा करके भी आप सर्वशक्तिवान के सिवा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। संजय उवाच। संजय ने बोला, शत्रुतापत निद्राजीत अर्जुन, जितेंद्रिय ह्यूमन बच्चियों के प्रकृति वेत्ता गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं गुरुजनों या संबंधियों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशयहर्ता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। हे भरतवंशी राजा, यादव सेना सहित कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रियजीत अमोघ वीर शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बढ़ाने लिए यह वचन कहने लगे। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग देहधारियों के धार्मिक अनिश्चय में मरने और दैहिक आधार पर निश्चय में जीने का शोक कभी भी नहीं करते। मैं अक्षयात्म ज्योतिरूप शिव, कोई भी समय ना था, ऐसा नहीं है। उसी तरह तू नहीं था अथवा ये नेतागण नहीं थे और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्मस्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, देह विनाशी है। जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत रज तम वाली कुमार युवावस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बलवीर के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ ब्रह्मावत्स कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य हैं। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। हे भोगी आत्मारूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा। इन सत-सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नाम का वट बीज फैला है उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगतपिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान कहे हैं। अतः हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर क्योंकि आत्म धर्म ही अविनाशी है। इस देहधारी आत्मा को मानने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देहरूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी ना किसी को मारता है और ना मारा जाता है। यह कभी ना जन्मता है और ना मरता है। हाँ सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है या होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा ऐसे भी नहीं है। अजन्मा नित्य सनातन कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। हे पृथ्वीपति जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य जन्म रहित अक्षय व अविनाशी जानता है वह अपने स्वभाव संस्कार का अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करता है। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती इसको अदर्शनीय हवा भी नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल भी नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अच्छे द्यो यमदायो यम अक्ले द्यो शोषे वच नित्य आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है और अग्नि जल द्वारा कभी नहीं जलता भीगता और निस्संदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितशील है। मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग ना रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जलादि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने की योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी हे अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु, तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देह भान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः ना टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद यह कल्पांत अथवा महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस हु बहु कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ हो जाने से। इस हीरो को कोई नंबर वार जानकार आश्चर्य से बताता है और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनता है और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसीलिए संसार में नंबर वार सुख भोगी हैं। शंकर क्या करते हैं? उन हीरो का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। मुरली तारीख 14/5/70। ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीच हीरो परम प्लस आत्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबर वार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए राजयोग से मिले राज्य सुख सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महाभारत युद्ध को हे पृथ्वीपति, सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे, वे स्वर्ग में आवेंगे। मुरली 6-5-67 पृष्ठ 1 अंत। किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा, तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। महारथी, तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे, जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। और तेरे 2500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी गंदी, असहनीय और सरासर झूठी ग्लानी भरी अनकहनी बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर संसारियों से मुंह छुपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीत कर अद्वैतवादी देवों की स्वर्गीय धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो, विश्व विजय तेरा ही जन्मसिद्ध अधिकार है। सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। देखिए गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदिरूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है, और अब कर्मयोग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी अनेक जन्मों में पुरुषोत्तम संगमी मानसी शूटिंग अनुसार महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चय लोगों की मते निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45, 52, 53वां श्लोक। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मानुगामी अविवेकी जन हैं, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, पश्चिम के श्रीनाथ में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित सांसारिक छप्पन भोग वाले भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रिया कांड आदि की बहुत बातें कहते हैं। मीठी वाणी से खींचे चित्त वालों और दैहिक भोगेश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। अर्जुन, वेद तीन गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी हैं। तू यहाँ विष्णु लोकीय तीन गुणों से परे सदा 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान सत्वगुण में स्थिर हुआ सुख दुखादि से द्वंद मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, क्योंकि योगक्षेम वहाँ में हम। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः देहभान छोड़ सदाकाल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मटमैले पोखरों में हो उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निसृत वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मूल्यों में होता है। श्रीमदनुसार कर्मयोग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं, इसलिए कर्मफल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। देखिए गीता के 3रे अध्याय के 27 से 30वें श्लोक तक। इसलिए तुम्हारी लोक संग्रहार्थ कर्मत्याग में कभी आसक्ति ना हो, कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन। आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्मफल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। ज्ञान धन जेता अर्जुन, एक उच्चतम शिव में बुद्धियोग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। कर्म फल के इच्छुक कंजूस हैं, विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ नहीं देना चाहते। कंजूस पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग कल्याण लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। सारे देशी गाय वाले घी के मार बेचकर भी खुद ही खा जाते हैं। अतः इन उड़ीसा जैसे गरीबों के राज्यों में पूरब के जगन्नाथ का सादा भोग खाना है। इसीलिए मुरली तारीख 26/6/70 में बोला, सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है, दाल या कड़ी, चावल, आलू। बुद्धियोगी इस लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म जैसे दान धर्म या रिश्वत चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। अतः क्षेत्र रूप अर्जुन के मुकर्रर रथ और क्षेत्रज्ञ शिव ज्योति के योग में जुट जा। क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। जब तेरी द्वापुर से ही विकारी बनी बुद्धि मीडिया शास्त्र दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई या विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धायुक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। मुरली तारीख 30/1/71 पृष्ठ 4 आदि। श्रुति विप्रतिपन्ना दे यदास्थास्यति निश्चला समाधा वचना बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र गत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधि गत स्थिति को पालेगा। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सदगति नहीं मिली है? मनुष्य आत्माओं की सदगति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सदगति हो नहीं सकती। मुरली तारीख 20/5/92 पृष्ठ 1 आदि। अर्जुन उवाच। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम्। अर्जुन ने बोला, कप्लस ईश अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ, स्थिर बुद्धि की अर्थात संपूर्ण प्लस अधि प्लस थसे अर्थात आत्मस्टार की पूरी गहराई में स्थिरता की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को एक मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्म स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। बाकी इच्छा मात्रम अविद्या। मुरली तारीख 10/4/68 पृष्ठ 3 अंत। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 4था श्लोक, 18वें अध्याय का 24वां श्लोक, 4थे अध्याय का 19वां श्लोक इत्यादि। दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित और पुरुषोत्तम संगमयुग में खास राग भय क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से साक्षात ईश्वरीय महावाक्यों को पहचान कर मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो सिवा परमपिता प्लस परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ और उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति ना पूरा आनंदित होता है, ना दुखी होकर द्वेष करता है, उसकी पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोगों रूप रस गंध आदि सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्म स्थिर हो जाती है। विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषतः भले हटते हैं, किंतु रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती, जबकि इस राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। क्योंकि हे देहभिमान नाशिनी कुन अथवा देहम दारेति कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रियां, अर्जुन रथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज की तरह मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। सब इंद्रियों को भली भांति वश करके मुझ मामेकम शिव प्लस बाबा में मन लगा, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति अथवा लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। से संपूर्ण मोह अथवा मूर्ता आती है। भरपूर मूर्ता से जड़ जड़ी भूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। परंतु अनुशासित मन वाला राग द्वेष से विहीन पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल अथवा हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है, अर्थात सुख देने से ही सदा हर्षित। प्रसन्नता से इस योगी के जन्म जरादि सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से आत्मा में स्थिर होती है। जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर, भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती और श्रद्धा भावना ही शांत प्लस नु जैसे को शांति नहीं होती, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा, नहीं हो सकता ना। जो चंचल मन विषय भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती देह जैसी नाव की तरह इस बेलगाम दौड़ते अस्थिर अश्व रूप मन से बुद्धि को हर लेता है। अष्टमूर्ति रूप सहयोगियों रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई हैं, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्तार में स्थिर रहती है। सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्म रात्रि है उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है, वह 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युगी सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में मंथन करता मननशील मुनि के लिए रात्रि है। चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जल धाराएं प्रवेश पाती हैं, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं और संकल्प विकल्पों का अंबार एक अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा में समा जाती है या जलमयी में प्रवेश पाती है, वह आत्मा शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। मुल्ली तारीख 27/6/65 पृष्ठ 2 आदि। जो पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित ममताहीन और निरहंकारी निर्माण नम्रचित भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी परम्ब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। अर्जुन, यह परम्ब्रह्म परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त और अविनाशी अवस्था में स्थिर हो नंबरवार भिन्न भिन्न पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परम्ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम।